ग्यारहवां अध्याय। बनारस का करामाती सन्यासी। मुझे बंगाल की अपनी यात्राओं को बिना दर्ज किए छोड़ना होगा। मैंने बोधगया के पास 3 तिब्बती लामाओं से हुई मुलाकात का विवरण भी छोड़ दिया है। उन्होंने मुझे पहाड़ों में स्थित अपने मठ पर आमंत्रित किया था, क्योंकि मुझे बनारस के पवित्र शहर पहुंचने की जल्दी है। हमारी रेलगाड़ी धड़धड़ाती हुई शहर के निकट बड़े से लोहे के पुल को पार कर जाती है। इस तरह बाहर के लोग यदि गंगा नदी के स्वच्छ जल के ऊपर से अग्निरथ दौड़ाते रहेंगे तो गंगा नदी अधिक समय तक पवित्र नहीं रह सकती। बनारस शहर की भी यही स्थिति है। मैं स्टेशन से निकलकर बाहर प्रतीक्षा कर रही एक गाड़ी में बैठ जाता हूँ। तीर्थयात्रियों का एक बड़ा झुंड इधर उधर धक्का मुक्की करता हुआ निकल रहा है। हम लोग धूल भरी सड़क से गुजरते हैं। मैं वातावरण में एक नए तत्व की उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ। मैं उसे नजरअंदाज करने का प्रयास करता हूँ, परंतु यह उतनी ही तीव्रता से मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह भारत का सबसे पवित्र शहर है। यहां की गंध सबसे खराब है। बनारस भारत के प्राचीनतम और भरी पूरी जनसंख्या वाले शहर के रूप में विख्यात है। यहां की दुर्गंध इसकी पुष्टि करती है। यहां वायु इतनी गंदी है कि ठहर पाना मुश्किल है। मैं हिम्मत हार रहा हूं। क्या मुझे अपने वाहन चालक को स्टेशन वापस चलने के लिए कहना चाहिए? हर कीमत चुकाकर धर्म निष्ठा अर्जित करने की अपेक्षा क्या परले दर्जे का नास्तिक बने रहना और साफ हवा में सांस लेना बेहतर नहीं होगा? मुझे फिर यह विचार आता है कि कुछ ही समय में व्यक्ति जिस तरह इस गंदे शहर यहां की अन्य चीजों का अभ्यस्त हो जाता है, उसी तरह यहां की वायु का भी अभ्यस्त हो जाता है। बनारस हिंदू संस्कृति का केंद्र है, तो रहे फिर भी हमारे जैसे नास्तिक गोरे लोगों से कुछ तो सीखो और धार्मिकता में थोड़ी साफ सफाई भी लेकर आओ। मैं समझ रहा हूं कि वहां दुर्गंध का कुछ कारण सड़क पर फैला गोबर और मिट्टी है, और उसका एक मुख्य कारण शहर के बाहर से बहने वाला एक पुराना नाला भी है, जिसे कई पीढ़ियों से कूड़ा घर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यदि भारतीय इतिवृत्ति को देखा जाए तो ईसा पूर्व 1200 वर्ष के आसपास बनारस अपने आप में एक अच्छा नगर था। जिस तरह अंग्रेज धार्मिक लोग मध्यकालीन युग के समय सेंट्रल ब्यूरो के शहर जाया करते थे, उसी तरह भारत के लोग भी विभिन्न क्षेत्रों से बनारस के पवित्र शहर आते थे। धनाढ्य अथवा गरीब हिंदू लोग इस शहर से आशीर्वाद लेने आते थे, जबकि बीमार लोग अपने अंतिम दिनों को बिताने आते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यहां प्राण त्यागने से मनुष्य को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगले दिन मैं पुरानी काशी नगरी, इसे लोग यहां इसी नाम से पुकारते हैं, मैं घूमने निकलता हूं और वहां की भूल भुलैयादार गलियों में भटकता हूं। इस तरह भटकने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। मेरी जेब में एक कागज है जिस पर एक करामाती योगी के घर का पता लिखा है। मैं उसके शिष्य से मुंबई में मिला था। मैं अत्यंत सक्रिय और घुटन भरी गलियों से होकर गुजर रहा हूं। बीच में कुछ भीड़भाड़ वाले बाजार पड़ते हैं, जहां विभिन्न जातियों के लोग नजर आते हैं। रास्ते में खुजली वाले कुत्ते और मक्खियां भी भिनक रही हैं। उन्हीं गलियों में दुर्बल एवं वृद्ध औरतें तथा भरे पूरे शरीर वाली युवा महिलाएं भी मिलती हैं। कुछ तीर्थयात्री हैं जो माला जप रहे हैं और साथ में मंत्रोच्चारण भी करते जाते हैं। वह मंत्रों को लगभग 50,000 बार दोहराते हैं। रास्ते में मुझे भभूत लपेटे हुए कुछ बूढ़े सन्यासियों के दर्शन होते हैं। इस तरह मैं अनेक घुमावदार गलियों से तथा शोरगुल और भीड़भाड़ को पार करता हुआ अचानक स्वर्ण मंदिर तक पहुंच जाता हूं, जो भारत में रूढ़िवादी लोगों के बीच प्रसिद्ध है। उसके द्वार पर राख लपेटे हुए एक सन्यासी, जिन्हें मेरे जैसे पश्चिमवासी फूटी आंखें देखना भी नहीं चाहते, बैठा हुआ है। मंदिर में अनगिनत श्रद्धालु हर समय आते जाते रहते हैं। कुछ लोग सुंदर फूलों की माला लेकर आते हैं, उससे वहां का दृश्य बड़ा मनोरम दिखाई पड़ता है। वे सब श्रद्धालु मंदिर से निकलते हुए द्वार पर माथा टेकते हैं और फिर वहां खड़े मुझ गोरे नास्तिक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैं उन लोगों और स्वयं के बीच मौजूद अदृश्य अवरोध से अवगत हूं। सोने की मोटी चादरों से बने दो बड़े गुंबद धूप में चमचमा रहे हैं। पास की इमारत पर असंख्य तोते बैठे शोरगुल कर रहे हैं। वह मंदिर भगवान शिव का धाम माना जाता है। मैं सोच रहा हूं कि इनका वह ईश्वर, जिसके सामने हिंदू लोग रोते हैं तथा प्रार्थना करते हैं, और वह इष्ट देव, जिसकी पत्थर की मूर्तियों पर सुगंधित पुष्प एवं पके हुए चावल चढ़ाते हैं, कहाँ है। मैं आगे बढ़कर एक और मंदिर के द्वार पर खड़ा हो जाता हूं, जहां भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा के सामने कपूर जल रहा है। मंदिर की घंटियां और शंखनाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं का ध्यान सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। एक पतला और दुर्बल पुजारी मंदिर से बाहर निकलता है और प्रश्नवाचक निगाहों से मुझे देखने लगता है। उन बनारस के मंदिरों और घरों में स्थापित अनगिनत प्रतिमाओं को कौन गिन सकता है। कभी दार्शनिक तो कभी गंभीर दिखने वाले हिंदुओं को कौन समझ सकता है। मैं अंधेरे रास्ते पर अकेले पैदल चलता हुआ करामती सन्यासी का घर खोज रहा हूं। मैं घुमावदार गलियों से गुजरता हुआ चौड़ी सड़कों पर निकल आता हूं। कुछ छोटे लड़के, कुछ पतले दुबले युवक और कुछ बड़ी उम्र के लोग मेरे समीप से झुंड बनाकर गुजर रहे हैं। उनके नेता के हाथ में एक बैनर है, जिस पर झंडा बना हुआ है और उस पर कुछ लिखा है। वे लोग किसी गीत की पंक्तियां गाते हुए जा रहे हैं। वे मुझे विद्रोही ढंग से देखते हैं और फिर घूरते हुए निकल जाते हैं। उन्हें देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि यह राजनीतिक लोगों का झुंड है। पिछली रात एक भरे पूरे बाजार में, जहां कोई यूरोपीय व्यक्ति अथवा पुलिस वाला नहीं था, किसी ने पीछे से आकर मुझे मारने की धमकी दी थी। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो उन युवा कट्टरपंथी लोगों का झुंड अंधकार में कहीं गायब हो गया है। मुझे उस झुंड को देखकर उन लोगों पर दया आ रही है। राजनीति ने, जो सबको सब कुछ देने का वादा करती है, कुछ लोगों को अपना शिकार बना लिया है। आखिरकार मैं एक गली में आ पहुंचता हूं, जहां घर बड़े आकार के, साफ सुथरे और अच्छे ढंग से बने हुए हैं। मैंने अपनी चाल तेज कर दी है और मैं जल्द ही एक फाटक के सामने पहुंच गया हूं। उसके सामने विशुद्धानंद लिखा है। मैं घर के भीतर प्रवेश करता हूं। यही वह घर है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं बरामदे में पहुंचता हूं। वहां एक व्यक्ति बैठा है। वह युवा है और वह देखने में बुद्धिमान नहीं लगता। मैं उससे हिंदुस्तानी भाषा में पूछता हूं, गुरुजी कहाँ हैं? परंतु वह सिर हिलाकर बताता है कि वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता। मैं गुरु का नाम बताता हूं, परंतु फिर भी वह मुझे नकारात्मक उत्तर देता है। मैं निराश हो गया हूं, परंतु जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। मेरे भीतर की आवाज मुझसे कह रही है कि इस युवक के मन में यह विचार चल रहा है कि यूरोपीय व्यक्ति को यहां क्या काम हो सकता है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि मैं शायद कोई और घर खोज रहा हूं। मैं उसे अनदेखा कर सीधा घर के भीतर प्रवेश कर जाता हूँ। वहां कुछ लोग अर्धवृत्ताकार में बैठे हैं, कुछ अच्छे घरों के भारतीय लोग भी फर्श पर बैठे हैं। एक बूढ़ा दाढ़ी वाला व्यक्ति कमरे के एक कोने में दीवान पर बैठा हुआ है। उसकी भाव भंगिमा और अन्य बातों से देखकर यह स्पष्ट है कि मैं इसी व्यक्ति की तलाश में यहां आया हूं। मैं उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मैं परंपरागत हिंदुस्तानी अंदाज में उसका अभिवादन करता हूं। मैं अपना परिचय आरंभ करता हूं और उसे बताता हूं कि मैं एक लेखक हूं और भारत में घूमने आया हूं। साथ ही यहां के दर्शन शास्त्र और रहस्यवाद को समझने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उसे यह भी बता देता हूं कि जिस शिष्य से मेरी मुलाकात हुई थी उसने मुझे समझा दिया था कि गुरुदेव अपनी शक्तियों का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करते, यहां तक कि वह अकेले में भी अजनबियों के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते। भारत के प्राचीन ज्ञान में मेरी गहरी रुचि को देखते हुए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे अपवाद स्वरूप देखें। गुरुदेव के शिष्य एक दूसरे की ओर ताकने लगते हैं, फिर वह अपने गुरु को देखते हैं तथा उनके उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। विशुद्धानंद की आयु 70 वर्ष के करीब है। उनकी नाक छोटी तथा चेहरे पर लंबी दाढ़ी है। मैं उनकी बड़ी आंखें देखकर हैरान हूं। उनके गले में जनेऊ भी है। वह वृद्ध पुरुष मेरी ओर ऐसे देखता है मानो मैं कोई जीव हूं और माइक्रोस्कोप के नीचे मेरी जांच की जा रही है। मुझे हृदय में एक अजीब सा आभास हो रहा है। सच कहूं तो उस कक्ष में मुझे एक विचित्र शक्ति स्पष्ट महसूस हो रही है। मैं असहज महसूस कर रहा हूं। कुछ पल बाद गुरुजी कुछ बोलते हैं। वो शायद बांग्ला भाषा में बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात अपने शिष्य को कही है। वह मुझे बताता है कि यदि मुझे गुरुदेव से बात करनी है तो मुझे गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य पंडित कविराज को अपने साथ लाना होगा, जो हमारे बीच दुभाषी का काम करेंगे। पंडित जी का अंग्रेजी का ज्ञान बहुत बढ़िया है और वह विशुद्धानंद के पुराने शिष्य भी हैं, इसलिए वह हम दोनों के बीच अच्छे माध्यम का कार्य कर सकेंगे। आप कल दोपहर में उनके साथ आइए, गुरुदेव ने कहा। मैं 4 बजे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मुझे विवश होकर वहां से लौटना पड़ता है। मैं सड़क से एक वाहन लेता हूं और संस्कृत कॉलेज की ओर चल पड़ता हूं। वहां पहुंचने पर पता लगता है कि प्रधानाचार्य मौजूद नहीं है। कोई मुझे बताता है कि वह शायद अपने घर पर हो सकते हैं। मैं आधा घंटा आगे चलकर उनके घर पहुंचता हूं। उनका घर इटली की मध्यकालीन इमारत जैसा है। पंडित जी ऊपर के कमरे में फर्श पर बैठते हैं। उनके आसपास किताबों और कागजों का ढेर लगा है। उनकी भाव भंगिमा और रूप रंग बिल्कुल ब्राह्मणों जैसा है और चेहरे पर ज्ञान का तेज है। मैं उन्हें अपने आने का कारण बताता हूं। वह कुछ हिचकिचाते हैं पर फिर अगले दिन मेरे साथ चलने के लिए हामी भर देते हैं। उनके साथ मुलाकात का समय तय हो जाता है और मैं वहां से लौट आता हूं। मैं गंगा किनारे तक गाड़ी में जाता हूं और फिर उसे छोड़ देता हूं। मैं कुछ देर नदी के किनारे टहलता हूं। नदी के किनारे तीर्थयात्रियों के स्नान की सुविधा के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई है। अनेक शताब्दियों के उपयोग से यह खुरदुरी और ऊंची नीची हो गई है। बनारस का पानी कितना गंदा और अस्थिर है। बहुत से मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। उनके चमचमाते गुंबद नजर आते हैं। उनमें से कोई ऊंचा कोई नीचा है। वहां प्राचीन तथा आधुनिक इमारतों का अस्त व्यस्त मिश्रण दिखाई पड़ता है। चारों ओर पुजारी और तीर्थयात्री घूम रहे हैं। मुझे छोटे और खुले कमरे में बहुत से पंडित नजर आते हैं। जो शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। कमरों की दीवारें सादी है। शिक्षक दरियों पर बैठते हैं और उनके शिष्य भी उनके सामने फर्श पर बैठते हैं और अपने गुरुओं द्वारा बताए सिद्धांतों को रटे रटाए ढंग से आत्मसात करते जाते हैं। एक दाढ़ी वाले सन्यासी को देखकर मेरी उत्सुकता जागृत होती है। वह मिट्टी में लौटते हुए 400 मील का सफर तय कर चुका है। बनारस की तीर्थ यात्रा का यह बहुत विचित्र तरीका है। वहां से आगे चलकर मुझे एक व्यक्ति नजर आता है। उसने अपना एक हाथ कई वर्षों से हवा में उठा रखा है। उसके हाथ की मांसपेशियां और तंत्र सिकुड़ चुके हैं तथा ऊपर का मांस भी सिकुड़कर बिल्कुल सूख चुका है। ऐसी व्यर्थ साधनाओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? शायद बस इतना ही कि यहां की तेज गर्मी और धूप ने इन लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। छाया के नीचे भी तापमान 120 डिग्री तक रहता है। इसकी गर्मी से शायद इन लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। यह सब लोग किसी धार्मिक उन्माद का शिकार हैं। अगले दिन मैं और पंडित कविराज ठीक 4 बजे गुरुदेव के घर पहुंच जाते हैं। हम लोग उनके कक्ष में प्रवेश करके अभिवादन करते हैं। वहां लगभग 6 और शिष्य मौजूद हैं। विशुद्धानंद मुझे अपने समीप आने का संकेत करते हैं। मैं उनसे कुछ फीट की दूरी पर फर्श पर बैठ जाता हूं। क्या आप मेरा कोई चमत्कार देखना चाहते हैं? उनका पहला प्रश्न है। यदि गुरुदेव मुझ पर यह कृपा करें तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। मुझे अपना रुमाल दीजिए, यदि रेशम का हो तो और भी अच्छा, पंडित जी अनुवाद करके बताते हैं। आपको जो भी सुगंध पसंद है वही इस रुमाल में आ जाएगी। इसके लिए केवल एक लेंस तथा सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से मेरे पास एक रेशमी रुमाल है। मैं वह रुमाल करामाती साधु को दे देता हूं। वे अपने पास से एक छोटा सा लेंस निकालते हैं और फिर मुझे बताते हैं कि वे सूर्य की किरणों को उस रुमाल पर केंद्रित करेंगे, परंतु सूर्य की मौजूदा स्थिति के कारण कमरे में छाया है, इसलिए इसे सीधे नहीं किया जा सकता। इस परेशानी को दूर करने के लिए वह अपने एक शिष्य को बाहर भेजते हैं। वह एक छोटे शीशे का प्रयोग करके सूर्य की किरणों को खिड़की से भीतर परावर्तित कर देता है। अब मैं आपके लिए हवा में से एक सुगंध पैदा करूंगा, विशुद्धानंद कहते हैं। आपको कौन सी सुगंध पसंद है? क्या आप सफेद मोगरे की सुगंध पैदा कर सकते हैं? वह रुमाल को अपने बाएं हाथ में पकड़ते हैं और उसके ऊपर लेंस रखते हैं। केवल 2 सेकंड के लिए सूर्य की किरण रेशमी रुमाल पर पड़ती है। फिर वह लेंस को हटा लेते हैं और रुमाल मुझे थमा देते हैं। मैं उसे नाक के पास ले जाता हूं। मुझे सफेद मोगरे की सुगंध आ रही है। मैं रुमाल को ध्यान से देखता हूं, लेकिन मुझे उस पर किसी तरह की नमी अथवा तरल इत्र का प्रमाण नहीं मिलता। मैं दुविधा में हूं और उस वृद्ध पुरुष की ओर संदेह की दृष्टि से देखता हूं। वह इस प्रदर्शन को दोहराने की बात करते हैं। दूसरी बार मैं गुलाब की सुगंध की फरमाइश करता हूं। मैं उन्हें प्रयोग दोहराते देख रहा हूं। मेरी नजर उनकी प्रत्येक हरकत पर है। मैं उनके हाथों को भी ध्यान से देख रहा हूं। उनके निर्मल वस्त्रों पर भी मेरी पैनी निगाह है, परंतु मुझे कुछ संदेहास्पद नहीं दिखाई पड़ता। वह पहले की तरह प्रक्रिया दोहराते हैं और रुमाल में गुलाब की सुगंध आने लगती है। मेरी तीसरी पसंद बनफसा का फूल है। इसमें भी गुरुदेव पूरी तरह सफल हो जाते हैं। विशुद्धानंद को अपनी सफलता पर अहंकार नहीं है। वह पूरे प्रदर्शन को बहुत सामान्य ढंग से देखते हैं। यह उनके लिए बहुत छोटी घटना है। उनका चेहरा सहज अवस्था में नहीं है। अब मैं एक सुगंध का चुनाव करूंगा, वह अचानक बोलती हैं। मैं ऐसे फूल की सुगंध चाहता हूं जो केवल तिब्बत में उगता है। ऐसा कहकर वह सूर्य की किरणों को रुमाल के एक ओर कोने ऐसा कहकर वह सूर्य की किरणों को रुमाल के एक और कोने पर केंद्रित करते हैं और लो, यह हो भी गया। उन्होंने एक चौथी सुगंध पैदा कर दी है, परंतु मैं उसे पहचानने में असमर्थ हूं। मुझे अब आश्चर्य हो रहा है। मैं अपना रुमाल जेब में रख लेता हूं। वह कारनामा सचमुच चमत्कार जैसा था। क्या उस वृद्ध व्यक्ति ने कोई सुगंध अपने पास छुपाकर रखी है? क्या वह उसके वस्त्रों में छिपी हो सकती है? परंतु ऐसा करने के लिए उसे कई तरह की सुगंध बड़ी मात्रा में अपने पास रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कहे बिना उन्हें नहीं पता कि मैं कौन सी सुगंध की मांग करूंगा। उनके वस्त्र इतने सादे हैं कि उनमें इतना सामान रख पाना मुश्किल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक भी बार अपने हाथ को कपड़ों के भीतर नहीं डाला है। मैं लेंस की जांच करने की अनुमति चाहता हूं। वह आराम से मुझे लेंस पकड़ा देते हैं। मैं उसे ध्यान से देखता हूं, लेकिन मुझे उसे देखकर भी किसी तरह का संदेह नहीं होता। इसके अतिरिक्त वहां एक और सुरक्षा कवच है। विशुद्धानंद को केवल मैं ही नहीं बल्कि उनके इर्द गिर्द बैठे लगभग 6 शिष्य देख रहे हैं। पंडित जी ने मुझे पहले बता दिया था कि वहां बैठे सब लोग शिक्षित और जिम्मेदार लोग हैं। सम्मोहन द्वारा इसका स्पष्टीकरण देना संभव है। इसे आसानी से जांचा भी जा सकता है। मैं अपने घर लौटकर उससे रुमाल को कुछ अन्य लोगों को भी दिखाऊंगा। मुझे दिखाने के लिए विशुद्धानंद के पास एक और जबरदस्त कारनामा है। इसे वह बहुत कम करते हैं। वह मुझे बताते हैं कि उन्हें अपने दूसरे कर्तव्य के लिए तेज धूप की आवश्यकता होगी। चूंकि सूर्य अस्त होने वाला है तो कर्तव्य को दिखा पाना संभव नहीं होगा। मुझे सप्ताह के किसी अन्य दिन तेज धूप के समय आने के लिए कहा गया है। उनका कहना है कि वे मुझे मृत जीव को अस्थायी तौर पर जीवित करने का अद्भुत कारनामा करके दिखाएंगे। मैं घर लौटकर अपना रुमाल तीन अन्य लोगों को दिखाता हूं। वह तीनों लोग रुमाल में सभी सुगंधों के होने की पुष्टि करते हैं, इसलिए इस करामात को सम्मोहन का नाम नहीं दिया जा सकता और न ही इस कर्तव्य को हाथ की सफाई अथवा चाल की संज्ञा दी जा सकती है। मैं एक बार फिर गुरुजी के घर में पहुंच गया हूं। वे कहते हैं कि वे फिलहाल किसी छोटे जानवर को जीवित कर सकते हैं। वे प्रायः किसी पक्षी के साथ यह प्रयोग करते हैं। एक चिड़िया को पकड़कर मार दिया जाता है और उसे हमारे सामने एक घंटे के लिए यूं ही रहने दिया जाता है, ताकि हमें इस बात का संतोष हो जाए कि वह सचमुच मर चुकी है। उसकी आंखें स्थिर है और शरीर अकड़ चुका है। मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि उस छोटे से जीव के शरीर में अब प्राण नहीं है। जादूगर लेंस उठाता है और सूर्य की किरणों को पक्षी की आंखों पर केंद्रित करता है। मैं कुछ मिनट प्रतीक्षा करता हूं। वह वृद्ध व्यक्ति अपने कार्य में लीन है। उसकी बड़ी आंखें और गंभीर चेहरा भावहीन दिखाई देते हैं। अचानक उसके होठ खुलते हैं और वह कुछ अजीब सी आवाज निकालता है। कुछ पल बाद पक्षी का शरीर हिलने लगता है। मैंने सामान्य तौर पर कुत्तों को ऐसे हिलते देखा है जब उनकी मृत्यु निकट होती है। इसके बाद चिड़िया अपने पंख हिलाती है और उठकर पैरों पर खड़ी हो जाती है। वह फर्श पर फुदकना शुरू कर देती है। सचमुच वह मृत जीव दोबारा जीवित हो चुका है। अगले चरण में वह चिड़िया थोड़ी ताकत जमा करके हवा में उड़ने का प्रयास करती है और फुदक कर नई जगह बैठ जाती है। फिर वह कमरे के भीतर उड़ने लगती है। यह कारनामा इतना अविश्वसनीय है कि मुझे खुद को संभालना पड़ता है ताकि मैं यह मान सकूं कि मेरे आसपास जो कुछ हो रहा है वह भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी तरह लगभग आधा घंटा बीत जाता है। मैं देखता हूं कि पक्षी लगातार इधर उधर उड़ रहा है। अचानक मुझे एक नया आश्चर्य देखने को मिलता है। वह पक्षी नीचे गिरता है और फर्श पर निश्चेष्ट पड़ जाता है। वह बिना हिले डुले यूं ही जमीन पर पड़ा रहता है। जांच करने पर पता लगता है कि उसके प्राण निकल चुके हैं और उसकी मृत्यु हो गई है। क्या आप इसके जीवन को थोड़ा और लंबा कर सकते थे? मैं जादूगर से पूछता हूं। फिलहाल मैं इतना ही करके दिखा सकता हूं, वह उत्तर देते हैं। इसके बाद पंडित जी मुझे धीरे से कहते हैं कि भविष्य में होने वाले प्रयोगों के बाद हमें कुछ और शानदार चीजें देखने को मिलेंगी। उनके गुरुदेव बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु मुझे उसके लिए जोर नहीं देना चाहिए। मुझे उनके साथ सड़क पर तमाशा दिखाने वाले की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने जो कुछ देखा है मुझे उससे संतुष्ट रहना होगा। मुझे एक बार फिर उस जगह पर रहस्यमय शक्ति का आभास हो रहा है। विशुद्धानंद की रहस्यमय शक्तियों की कथाओं के कारण यह आभास बढ़ गया है। मुझे बताया गया है कि गुरुदेव हवा में से ताजे अंगूर और मिठाई पैदा कर सकते हैं। वे यदि अपने हाथ में मुरझाए हुए फूल को पकड़े तो वह दोबारा ताजा हो सकता है। इन चमत्कारों के पीछे कौन सा रहस्य है? मैं इसके संकेत प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उनसे कोई असाधारण उत्तर चाहता हूं, परंतु इनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। इसका असली रहस्य बनारस के इस करामाती सन्यासी के दिमाग में छिपा है। उसने वह रहस्य अभी तक अपने सबसे प्रिय और निकटतम शिष्य को भी नहीं बताया है। वह मुझे बताता है कि उसका जन्म बंगाल में हुआ था। उसे 13 वर्ष की आयु में किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसकी मां को उसके जीवित बचने की उम्मीद नहीं थी। वह उसे गंगा के पास ले गई। हिंदू धर्म के अनुसार इस नदी के समीप होने वाली मृत्यु से अधिक पवित्र कुछ नहीं है। उसका परिवार अंतिम क्रिया के लिए वहां उपस्थित था। उसके शरीर को धीरे धीरे पानी में उतारा गया कि अचानक एक चमत्कार हुआ। वह उसे पानी में जितना डुबाते थे पानी उसके शरीर से उतना ही नीचे उतर जाता था। उसे दोबारा ऊपर उठाया गया तो पानी भी ऊपर उठकर सामान्य स्तर पर आ गया। कई बार यह प्रयास किया गया किंतु बार बार पानी नीचे उतर जाता था और फिर ऊपर आ जाता था। संक्षेप में, गंगा नदी ने उस लड़के को अपनी गोद में लेना स्वीकार नहीं किया। उसी समय नदी के तट पर एक योगी बैठा यह तमाशा देख रहा था। वह उठा और उसने भविष्यवाणी की कि यह लड़का जीवित बच जाएगा और महान बनेगा। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है क्योंकि यह एक प्रसिद्ध योगी बन जाएगा। उसके बाद उस योगी ने अपने पास से कुछ जड़ी बूटियां पीसकर बच्चे के घाव पर लगा दी और चला गया। 7 दिन बाद वह लौटा तो बालक पूरी तरह ठीक हो चुका था। परंतु इस बीच उस बच्चे के साथ एक विचित्र बात हुई। उसका मानसिक स्वभाव और चरित्र बदल गया। वह घर में अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता था। उसका मन योगी की तरह भटकने लगा। उसकी माता को सदैव उसकी चिंता रहती थी। एक दिन कुछ वर्षों बाद उसकी माता ने उसे घर त्यागने की अनुमति दे दी। वह बालक योगियों की तलाश में घर छोड़कर चला गया। वह हिमालय पार करके तिब्बत पहुंच गया, जिसे रहस्यों की भूमि कहा जाता है। इस बालक को आशा थी कि उसे वहां चमत्कार करने वाले प्रख्यात सन्यासी अवश्य मिलेंगे और उसकी मुलाकात अपने गुरु से हो जाएगी। भारतीय लोगों का इस बात में अटूट विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति योग विद्या में पारंगत होना चाहता है तो उसे एक अच्छे योग गुरु का शिष्य बनकर रहना पड़ता है। वह युवा बंगाली लड़का भी ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में था। उसने कुटिया, गुफाओं और पहाड़ों में रहने वाले बहुत से साधु संन्यासियों की खोज की, परंतु वह निराश होकर घर लौट आया। इसी तरह अनेक वर्ष बीत गए, परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उस युवक ने एक बार फिर सीमा पार की तथा दक्षिणी तिब्बत के खाली मैदानों में भटकने के लिए निकल पड़ा। पहाड़ों में एक स्थान पर उसे एक व्यक्ति मिला जो उसका गुरु बन गया। इसके बाद मुझे जो बात सुनने को मिली वह सुनकर किसी को भी जोर से हंसी आ सकती है, परंतु मैं उसे सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हूं। मुझे बताया गया कि उस तिब्बती गुरु की आयु कम से कम 1200 वर्ष है। यह बात इतनी सादगी भरे ढंग से कही गई थी मानो कोई पश्चिमवासी बता रहा हो कि उसकी आयु 40 वर्ष है। मैं दीर्घायु का यह अद्भुत किस्सा पहले भी दो बार सुन चुका हूं। अड्यार नदी के योगी ब्रह्मा मुझे बताता था कि नेपाल में उसके गुरु की आयु 400 वर्ष से अधिक थी। दूसरा, जब मैं पश्चिमी भारत में एक व्यक्ति से मिला तो उसने मुझे बताया कि हिमालय पर्वत पर एक योगी है जिसकी आयु 1000 वर्ष से भी अधिक है। मैंने उस समय उन दोनों बातों को नजरअंदाज कर दिया था, परंतु अब मुझे फिर से वही बात सुनकर विचित्र लग रहा है, क्योंकि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है वह भी अमर होने के मार्ग पर चल रहा है। तिब्बती गुरु ने युवा विशुद्धानंद को योग के सिद्धांतों और पद्धतियों का ज्ञान दिया। कठोर प्रशिक्षण के बाद शिष्य विशुद्धानंद ने शरीर एवं मन पर नियंत्रण की अलौकिक शक्तियां अर्जित कर ली। उसे सूर्य विज्ञान नाम की एक अनूठी कला की शिक्षा भी दी गई। 12 वर्ष तक बर्फीले स्थान में कठोर जीवन के बावजूद विशुद्धानंद ने तिब्बती गुरु के चरणों में रहकर सेवा की। प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर उसे भारत भेज दिया गया। उसने पहाड़ों को पार किया और मैदान से होता हुआ वह योग गुरु बन गया। वह बंगाल की खाड़ी के निकट पुरी में रहने लगा, जहां आज भी उसका एक बड़ा मकान है। उसके पास बैठे शिष्य उच्च हिंदू घरों के लोग हैं। उनमें धनाढ्य व्यापारी, भूमिपति, सरकारी अफसर, यहां तक कि राजा भी शामिल हैं। मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, वहां सामान्य लोगों को आने की अनुमति नहीं है। आपने जो चमत्कार मुझे दिखाए वह आपने कैसे किए, मैं पूछता हूं। विशुद्धानंद अपने हाथ मोड़कर बैठ जाते हैं। आपने जो अभी देखा वह योग का परिणाम नहीं है, यह वास्तव में सूर्य विज्ञान का नतीजा है, परंतु सूर्य विज्ञान के लिए इन सब की आवश्यकता नहीं है। सूर्य विज्ञान केवल कुछ रहस्यों का संग्रह है और इसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसे किसी भी अन्य विज्ञान की तरह ही पढ़ा और समझा जाता है। पंडित कविराज कहते हैं कि यह अद्भुत कला विद्युत और चुंबक विज्ञान के जैसी है। मेरी दुविधा पहले की तरह अब भी बरकरार है, गुरुदेव कुछ अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तिब्बत से प्राप्त हुए सूर्य विज्ञान में नया कुछ नहीं है। यह ज्ञान भारत के योगियों के पास पहले से था, परंतु अब कुछ लोगों को छोड़कर यह लगभग लुप्त हो गया है। सूर्य की किरणों में जीवन प्रदान करने वाले तत्व मौजूद होते हैं, और यदि आप उन तत्वों को चुनकर उन्हें अलग करने का रहस्य जानते हैं तो आप इस तरह के चमत्कार कर सकते हैं। सूर्य की किरणों में विशेष शक्तियां होती है, और आप अभ्यास द्वारा उन्हें नियंत्रित करना सीख सकते हैं। क्या आप अपने शिष्यों को यह विज्ञान सिखाते हैं? मैंने अभी तक नहीं सिखाया है, लेकिन मैं ऐसा करने की सोच रहा हूं। इसके लिए कुछ शिष्यों को चुना जाएगा और उन्हें इन रहस्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम लोग एक बड़ी प्रयोगशाला बना रहे हैं, जहां अध्ययन के लिए कक्षाएं होंगी और प्रयोग आदि किए जाएंगे। फिलहाल आपके शिष्य क्या सीख रहे हैं? अभी इन्हें योग सिखाया जाता है। पंडित जी मुझे एक प्रयोगशाला दिखाने ले जाते हैं। इसका ढांचा आधुनिक है और यह कई मंजिला ऊंची है। यह विशिष्ट तौर पर यूरोपीय डिजाइन में बनी हुई है। इसकी दीवारें लाल ईंटों की है और इसकी दीवारों में खिड़कियों के लिए खाली स्थान बने हैं। इन जगहों पर कांच की बड़ी बड़ी चादरें लगाई जाएंगी, क्योंकि यहां होने वाले शोध कार्य के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है। इन्हें लाल, नीले, हरे, पीले तथा सादे शीशे द्वारा परावर्तित किया जाता है। पंडित जी ने मुझे बताया कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन विशाल खिड़कियों के लिए इतने बड़े शीशे बना सके, और इसलिए यह ढांचा पूरी नहीं हो पाया है। वह मुझसे कहते हैं कि मैं इस विषय में इंग्लैंड में भी पता करूं। वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि शीशा ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा विशुद्धानंद चाहते हैं। शर्त यह है कि शीशा निर्माता को यह गारंटी देनी होगी कि शीशे में हवा के बुलबुले बिल्कुल नहीं होंगे और रंगीन शीशा पूरी तरह पारदर्शी होगा। शीशे का प्रत्येक टुकड़ा 12 फुट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 1 इंच मोटा होना चाहिए। मैंने इंग्लैंड के कुछ बड़े शीशा निर्माताओं को चिट्ठी लिखी थी, परंतु उन सब ने उस कार्य को करने से मना कर दिया, क्योंकि विशुद्धानंद द्वारा निर्धारित तकनीकी शर्तों को पूरा कर पाना असंभव था। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को कोई भी शीशा निर्माता पूरा नहीं कर सकता। वह ऐसी गारंटी नहीं दे सकता कि शीशे में हवा के बुलबुले बिल्कुल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि शीशे को रंगीन बनाते समय उसकी पारदर्शिता कुछ कम अवश्य हो जाती है। उनके अनुसार शीशे को 1/4 इंच से अधिक मोटा नहीं बनाया जा सकता, और बनारस तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए शीशे का आकार निर्धारित से आधे आकार का ही होना चाहिए। प्रयोगशाला के आसपास बड़े बड़े उद्यान हैं। उसे खजूर के वृक्षों की कतार द्वारा बाहर के लोगों की नजरों से दूर रखा गया है। मैं करामाती साधु के पास लौट आता हूं। कुछ शिष्य कम हो गए हैं, अब वहां केवल 2 या 3 बाकी हैं। पंडित कविराज मेरे साथ बैठे हैं और बहुत ध्यान से अपने गुरु को देख रहे हैं। विशुद्धानंद एक पल के लिए मेरी ओर देखते हैं और फिर फर्श को देखने लगते हैं। उनके व्यवहार में प्रतिष्ठा और संकोच का मिश्रण है। उनका चेहरा सदा गंभीर रहता है। उनके शिष्यों के चेहरे पर भी गंभीरता झलकती है। मैं इस गंभीर मुखौटे के पीछे झांकने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आता। मेरा पाश्चात्य दिमाग इस व्यक्ति के मस्तिष्क को भेद पाने में असमर्थ है। यह व्यक्ति पूर्व के जादू में पूरी तरह डूबा हुआ है। हालांकि इसने मुझे मेरे बिना कहे चमत्कार करके दिखाए हैं, फिर भी इसने स्वयं और मेरे बीच में एक मानसिक अवरोध खड़ा कर रखा है, जिसे मैं कभी पार नहीं कर सकूंगा। मेरा स्वागत भी ऊपरी तौर पर ही हुआ है। आमतौर पर पश्चिम से आने वाले अन्वेषक तथा शिष्यों की यहां आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। विशुद्धानंद अचानक एक अप्रत्याशित बात कहते हैं, मैं तब तक आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता जब तक मुझे अपने तिब्बती गुरु से अनुमति न मिल जाए। मैं इसी शर्त पर यहां काम करता हूं। क्या इन्होंने मेरे दिमाग के विचार पढ़ लिए हैं? मैं उनकी ओर देखता हूं। उनके उभरे हुए मस्तक पर विचित्र रेखाएं हैं। मैंने उनका शिष्य बनने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है। मैं जल्दी किसी का शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं होता। मुझे एक बात का विश्वास है कि यदि मैं ऐसा कोई अनुरोध करूंगा तो मुझे उसका नकारात्मक उत्तर ही मिलेगा। परंतु आप इतनी दूर तिब्बत में अपने गुरु से संपर्क कैसे स्थापित कर सकते हैं? मैं पूछता हूं। हम लोग भीतरी तौर पर हमेशा संपर्क में रहते हैं, वे उत्तर देते हैं। मैं उनकी बात ध्यान से सुनता हूं परंतु समझने की चेष्टा नहीं करता। उनकी इस अप्रत्याशित बात ने एक पल के लिए मेरा दिमाग उनके चमत्कारों से हटा दिया है। मैं गंभीर मुद्रा में उनसे पूछता हूं, गुरुदेव, व्यक्ति को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? विशुद्धानंद मेरी बात का उत्तर नहीं देते, बल्कि वह मुझसे एक और प्रश्न करते हैं, आप योगाभ्यास किए बिना ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं उनकी बात पर विचार करता हूं। मुझे बताया गया है कि बिना गुरु के योग को समझना और उसका अभ्यास करना बहुत मुश्किल है, और सच्चे गुरु भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं। उनके चेहरे पर शांत भाव है। शिष्य जब तैयार हो जाता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। मैं इस बात पर संशय व्यक्त करता हूं। वे अपने हाथों को आगे फैला देते हैं। व्यक्ति को पहले स्वयं तैयार होना पड़ता है, उसके बाद वह जहां भी हो उसे गुरु अवश्य मिल जाता है। यदि सचमुच कोई गुरु न दिखे तो भी वह मन की आंखों से अवश्य नजर आता है। तो इस कार्य को कैसे आरंभ करना चाहिए? प्रतिदिन कुछ समय इस आसन में बैठना चाहिए जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इससे आपको तैयारी करने में सहायता मिलेगी। आपको क्रोध और उन्माद को नियंत्रित करने का अभ्यास भी करना होगा। विशुद्धानंद पद्मासन में बैठ जाते हैं, जिसे मैं पहले से जानता हूं। मुझे नहीं पता उन्होंने यह आसन क्यों लगाया है। कौन वयस्क यूरोपीय व्यक्ति इस तरह के उलझे हुए आसन में बैठ सकता है? मैं बोल पड़ता हूं। शुरू में इस आसन को करने में थोड़ी कठिनाई होती है, परंतु प्रतिदिन सुबह और शाम अभ्यास करने से यह आसान हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि योगाभ्यास के लिए प्रतिदिन समय निश्चित करना जरूरी है, और फिर उस समय पर अभ्यास करना भी आवश्यक है। शुरू में 5 मिनट काफी होते हैं। 1 महीने के अभ्यास के बाद आप इस अवधि को बढ़ाकर 10 मिनट कर सकते हैं, और फिर 3 महीने बाद 20 मिनट। इस तरह आप इसे बढ़ा सकते हैं। योगाभ्यास करते समय रीढ़ को सीधा रखना जरूरी है। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर शांति मिलती है, जो योगाभ्यास के लिए बहुत आवश्यक है। क्या आप शारीरिक नियंत्रण योग भी सिखाते हैं? हां, आप यह मत समझिए कि मस्तिष्क के नियंत्रण वाला योग अधिक श्रेष्ठ होता है। मनुष्य दिमाग और शरीर दोनों से काम लेता है, इसलिए दोनों चीजों का प्रशिक्षण आवश्यक है। शरीर मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है और मस्तिष्क भी शरीर को नियंत्रित करता है। हम व्यवहारिक विकास के संदर्भ में दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। मुझे फिर आभास होता है कि यह व्यक्ति भी अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का इच्छुक नहीं है। वातावरण में मानसिक ठंडक व्याप्त हो जाती है। मैं पीछे हटने का निश्चय करता हूं। वहां से लौटने से पूर्व एक अंतिम प्रश्न करता हूं, क्या आपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है? वहां बैठे शिष्य मेरी सादगी पर मुस्कुराने लगते हैं। मेरे जैसा नास्तिक और अज्ञानी पश्चिमवासी ही ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। क्या सभी धार्मिक हिंदू पुस्तकें इस ओर इशारा नहीं करती कि ईश्वर ने इस संसार को अपने हाथों में उठा रखा है और वह अपने उद्देश्य से कार्य करता रहता है? गुरुदेव मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते। वह मौन हो जाते हैं और कविराज की ओर देखने लगते हैं। कविराज मुझे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, निश्चित रूप से जीवन का उद्देश्य है परमात्मा से मिलन। इसके लिए हमें आध्यात्मिक रूप से आदर्श बनना होगा। इसके बाद लगभग एक घंटे तक कमरे में शांति रहती है। विशुद्धानंद एक मोटी पुस्तक की ओर इशारा कर रहे हैं जिस पर बांग्ला भाषा में छपा कागज चढ़ा हुआ है। उनके शिष्य उन्हें देखते रहते हैं या फिर वे सो जाते हैं अथवा ध्यान में डूब जाते हैं। मेरे ऊपर भी सम्मोहक प्रभाव और विश्रांति छाने लगी है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यदि वहां कुछ और समय रुका तो या तो मैं सो जाऊंगा अथवा ध्यान में डूब जाऊंगा। इसलिए मैं स्वयं को संभालता हूं तथा गुरुदेव को धन्यवाद देकर वहां से निकल जाता हूं। मैं हल्का भोजन करने के बाद फिर शहर के भीड़भाड़ वाले घुमावदार रास्तों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता हूं। वहां दूर दूर से धार्मिक लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन साथ ही कुछ दूषित प्रवृत्ति के गंदे और बुरे लोग भी मौजूद हैं। गंगा तट पर बने मंदिर की घंटियां संध्या पूजन का संकेत दे रही है। धीरे धीरे रात्रि निकट आ रही है और आसमान काला होने लगा है। सूर्यास्त ने अपनी छटा बिखेर दी है। मैं प्राचीन गंगा नदी के तट पर बैठा खजूर के वृक्षों की सरसराहट सुन रहा हूं जो हवा से धीरे धीरे हिल रहे हैं। तभी शरीर पर राख मले एक भिखारी मेरे पास आता है। वह निकट आकर रुक जाता है। मैं उसे देखता हूं। वह साधु लग रहा है क्योंकि उसकी आंखों में कुछ अलौकिक है। मुझे लगता है कि मैं प्राचीन भारत को समझने में असमर्थ रहा हूं। मैं जेब से कुछ सिक्के निकालता हूं और सभ्यता की खाई को पार करने की कोशिश करता हूं। वह प्रतिष्ठा के साथ सिक्के ले लेता है और हाथ हवा में उठाकर मुझे आशीर्वाद देता है और वहां से चला जाता है। मैंने उस करामाती सन्यासी के रहस्य पर काफी देर विचार किया जो कारनामे दिखाकर मृत पक्षियों को अस्थायी तौर पर जीवित कर देता है। सूर्य विज्ञान के विषय में उसका प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन उसने मुझे अधिक आकर्षित नहीं किया। कोई अज्ञानी ही इस बात से इनकार करेगा कि आधुनिक विज्ञान ने सूर्य की किरणों में मौजूद संभावनाओं को पहचाना नहीं है। इस मामले में कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे प्रेरित होकर मैं स्पष्टीकरण के लिए किसी अन्य दिशा में देखने को विवश हूं। पश्चिमी भारत में मुझे ऐसे दो योगियों का पता है जो विशुद्धानंद वाले कारनामे कर सकते हैं। दुर्भाग्य से दोनों व्यक्तियों की पिछली शताब्दी में मृत्यु हो गई थी, किंतु मुझे सूचना देने वाला स्रोत काफी विश्वसनीय था। इन दोनों ही मामलों में योगी के हाथ पर सुगंधित तैलीय पदार्थ प्रकट हो जाता था। संभव है वह पदार्थ उसकी त्वचा में से निकलता हो। कभी कभी तो इत्र की सुगंध इतनी तेज होती थी कि वह पूरे कमरे में फैल जाती थी। यदि विशुद्धानंद को भी वह कला आती है तो हो सकता है कि वह सुगंध को हथेली से रुमाल पर स्थानांतरित कर देता हो और लेंस वाला खेल केवल दिखाने के लिए हो। संक्षेप में, सूर्य की रोशनी पर ध्यान केंद्रित करने का प्रदर्शन केवल एक नाटक है, ताकि वह हथेली में उत्पन्न सुगंध को रुमाल पर महसूस करवा सके। एक अन्य बात इसका समर्थन करती है कि उस करामाती सन्यासी ने अपने किसी भी शिष्य को उस कारनामे का रहस्य नहीं सिखाया है। उन्हें केवल आशा बंधाई जाती है और महंगी प्रयोगशालाएं बनवाने का नाटक किया जाता है। यहां तक कि प्रयोगशाला बनाने का कार्य भी रोक दिया गया है, क्योंकि भारत में उतनी बड़ी शीशे बनाना असंभव है। इसलिए वे सब केवल झूठी आशा के भरोसे पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि सूर्य की रोशनी पर ध्यान केंद्रित करने वाली बात केवल दिखावा है, तो फिर विशुद्धानंद ने वास्तव में कौन से प्रक्रिया का प्रयोग किया होगा? यह हो सकता है कि सुगंध पैदा करना एक तरह की योग शक्ति हो, जिसे अपने व्यक्तिगत प्रयास द्वारा विकसित किया जाता है, परंतु इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। हालांकि मैं उस साधु द्वारा दिखाए कारनामे के पीछे का सिद्धांत नहीं बता सकता, फिर भी मुझे उसने सूर्य विज्ञान का जो सिद्धांत समझाने का प्रयास किया है, मुझे जल्दी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? मेरा दायित्व केवल लिखन तक सीमित है। मुझे इन घटनाओं को दर्ज करना है, न कि अवर्णनीय चीजों के स्पष्टीकरण देने हैं। यह भारतीय जीवन का ऐसा पक्ष है जो सदा छिपाकर रखा जाएगा। वह करामाती साधु या उसका कोई शिष्य यदि उन अद्भुत कारनामों को संसार के सामने प्रदर्शित करता है और वह वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हो जाता है, तो भी इस बात की कोई संभावना नहीं कि उस रहस्य को कभी कोई जान पाएगा। मुझे लगता है कि मैं उस व्यक्ति का चरित्र समझ गया हूं। मेरे भीतर की आवाज पूछ रही है, उसने मृत पक्षी को जीवित कैसे किया होगा? उसके अमर होने वाली कथा का क्या होगा? क्या पूर्व जगत के कुछ लोगों ने दीर्घायु होने का रहस्य जान लिया है? मैं अपना ध्यान भीतर की आवाज से हटाकर ऊपर ले जाता हूं। मैं तारों से भरे आसमान को देखकर विस्मित हूं। उष्णकटिबंधीय स्थानों में कोई ऐसी जगह नहीं जहां आकाश में एक साथ इतने तारे नजर आते हो। मैं उन टिमटिमाते तारों को काफी देर देखता रहता हूं। मेरी निगाह जैसे ही आसपास के लोगों और घरों पर पड़ती है, तो मुझे संसार के उलझे हुए रहस्य का फिर से आभास होने लगता है। स्पृश्य और साधारण वस्तुएं तेजी से असत्यता के पर्दे में छिप जाती है। छायादार आकृतियां धीमी गति से चलने लगती है। कुछ टिमटिमाती लालटेने रात्रि के वातावरण को सुहावने स्वप्निल संसार में परिवर्तित कर देती है। भारतीय दर्शन का सिद्धांत मेरे मस्तिष्क में तैर रहा है कि यह सृष्टि वास्तविक स्वरूप में सिर्फ भ्रम है। यह विचार धीरे धीरे सत्यता के आभास को नष्ट कर रहा है। मैं इस ग्रह के अद्भुत अनुभव के लिए तैयार हूं, परंतु तभी पृथ्वी का कोई प्राणी बड़े रूखे अंदाज में मेरे नैसर्गिक स्वप्न को तोड़कर भारतीय गीत की एक नीरस धुन सुनाने लगता है। मैं उन्हीं अनिश्चित सुखों एवं अप्रत्याशित दुखों की ओर लौट पड़ता हूं, जिसे लोग जीवन कहते हैं।